श्लोक कदर्थि तस्यापि हि धैर्य वृत्तेर न शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नधि शिखा याति कदाचिदेव। प्रसंगः धीरो मनुष्यः कदापि दुर्दशाग्रस्तोऽपि धैर्य न त्यजति। सोदाहरणं दर्शयति ग्रंथकार कदर्थितस्येति। अन्वयः कदर्थितस्य अपि धैर्य वृत्ते धैर्य गुणः हि प्रमाष्टुं न शक्यते अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहने शिखा कदाचित् एव अध न याति। व्याख्या कदर्थितस्य अपि दुर्दशाग्रस्तस्यापि दुखी नोपित्यर्थ धैर्य वृत्तेः धीरस्य पुरुष्येति शेषः धैर्य गुणः धीरताख्य गुणः हि निश्चयेन प्रमाष्टुं विनाशयितुं न शक्यते न पार्यते अधोमुखस्य अवनत वदनस्य कृतस्य अपि विहितस्यापि वहने अग्ने शिखा ज्वाला कदाचित् एव कस्मिन्नपि समये अधः नीचे न याति न गच्छति सर्वदो पर्येव यासीत्यर्थ। सरलार्थ दुर्दशाग्रस्तस्य दुखनी नोपि धीरपुरुषस्य धीरताख्युगुणो विनाशयितुं नैव पार्यते यथावनतवदनस्य विहितस्याप्यग्नेः ज्वाला कस्मिन्नपि समये नीचः न गच्छति। टिप्पणी धैर्यवृत्तेः धैर्येण वृत्तिः यस्यासौ धैर्यवृत्तिः तस्य बहु अधोमुखस्य अधः मुखं यस्यासौ अधोमुखस्तस्य। अवनतवदनस्य कृतस्य अपि विहितस्यापि वहने अग्ने शिखा ज्वाला कदाचित् एव कस्मिन्नपि समये अधः नीचे न याति न गच्छति सर्वदोपर्येव यासीत्यर्थ। सरलार्थ दुर्दशाग्रस्तस्य दुख नोपि धीरपुरुषस्य धीरताख्यगुणो विनाशयितुं नैव पार्यते यथावनतवदनस्य विहितस्यापि ज्वाला कस्मिन्नपि समये नीचे न गच्छति। टिप्पणी धैर्यवृत्तः धैर्येण वृत्ति यस्यासौ धैर्यवृत्तिः तस्य बहुवृद्धि अहो अधोमुखस्य अधः मुखं यस्यासौ अधोमुखस्तस्य बहुव्रीहि। श्लोके अस्मिन् स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौघः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ इतीन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रयोर्मिलिता द्विजातिवृत्तं लक्षणं यथा अनन्दरोतीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयौ उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस्विदमेव नाम इति अपि चात्र दृष्टान्तालङ्कारस्तलक्षणं यथा दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बिनम् इति ऊर्ध्वगमनात्मक स्वभावो अग्निज्वालाया भवति। बहुप्रयत्नः क्षणमात्रम् अधो मुखीकृतस्याग्नेर्ज्वाला कदापि नीचः न गच्छति सर्वदोपरीरेण गच्छति। यतो अग्निज्वालाया नैसर्गिको अयं गुणस्थ थैव धीरपुरुषस्य दुर्दशाग्रस्तस्य दुःखनो अपि धैर्याख्यगुणः केनापि विनाशयितुं न पार्यते यतो धीरपुरुषस्य धैर्याख्यगुणो नैसर्गिक एव वर्तते नैसर्गिकगुणं प्रयत्नेन न कोऽपि दूरीकर्तुं शक्नोतीति। प्रसङ्गः दुर्दशाग्रस्त धीरपुरुष के धैर्यं गुण को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है इसी बात को ग्रंथकार उदाहरण द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं। कदर्थि तस्येति हिंदी व्याख्या कदर्थितस्य दुर्दशा में पड़े हुए अपि भी धैर्य वृत्ते धैर्यशील मनुष्य का धैर्य गुणः धैर्य नामक गुण ही निश्चय ही प्रमाष्टुम मिटाया न नहीं शक्यते जा सकता है। अधोमुख से नीचे की ओर मुख कृतस्य कर दी गई अपि भी वहने आग की शिखा लपट कदाचित एव कभी भी अधः नीचे न नहीं याति जाती है। हिंदी अनुवाद दुर्दशा में पड़े हुए कि धैर्यशील मनुष्य का धैर्य नामक गुण निश्चय ही मिटाया नहीं जा सकता है नीचे की ओर मुख कर दी गई भी आग की लपट कभी भी नीचे नहीं जाती है। विमर्श ऊपर की ओर जाना आग की लपट का स्वभाव है बहुत प्रयत्न करके यदि क्षण मात्र के लिए भी आग की लपट का मुख नीचे की ओर कर दिया जाए तब भी वह नीचे नहीं जाएगी हर समय ऊपर की ओर जाएगी क्योंकि यह इसका नैसर्गिक गुण है। उसी प्रकार दीन दशा में पड़े हुए धीर पुरुष का धैर्य नामक गुण प्रयत्न करके भी मिटाया नहीं जा सकता है अर्थात चाहे कैसी भी दशा क्यों न हो धैर्यशील पुरुष धैर्य नहीं खोता है क्योंकि इसका यह नैसर्गिक गुण है चाहे कितना ही अधिक प्रयत्न क्यों न किया जाए कभी भी नैसर्गिक गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। श्लोक कांता कटाक्ष विशिखा न लूनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूति विषयाश न लोभ पासै लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं स धीर। प्रसंग संप्रति जगद्विज इनो धीरस्य लक्षणं निरूपयति ग्रंथकारः कांता कटाक्ष विशिखा इति। अन्वयः यस्य चित्तं कांता कटाक्ष विशिखाः न लूनन्ति कोप कृशानुतापः न निर्दहति भूरि विषया लोभ पाशै च न कर्षन्ति स धीर इदं कृत्स्नं लोकत्रयं जयति। व्याख्या यस्य धीरस्य चित्तं हृदयं कांता कटाक्ष विशिखा कामिनी कटाक्ष बाणा न लुनन्ति न छिन्दन्ति कोप कृशानुतापः क्रोधाग्नि संतापः न निर्दहति न ज्वलयति न संताप यतीत्यर्थः। भूरि विषया बहुभोग्य पदार्था नानाविधा स्रक्षन्दना दयो भोग्य पदार्था इत्यर्थ लोभ पाशै च अत्यधिकाभिलाष बन्धनैश्च न कर्षन्ति स्वाभिमुखं न कुर्वन्ति सः उपयुक्तः धीरः धैर्यशील पुरुष इदम् एतत् दृश्यमानं कृत्स्नं सम्पूर्णं लोकत्रयं त्रैलोक्यं स्वर्गमर्त्य पातालरूपं लोकत्रयमित्यर्थः जयति विजयते वशीकरोति इत्यर्थः। सरलार्थ यस्य धीरपुरुषस्य हृदयं कामिनी कटाक्षवाणा न छिन्दन्ति क्रोधाग्नि संतापो न संताप्यति नानाविधाः श्रक्तचन्दना दयो भोग्य पदार्थास्तिति व्राभिलाष बन्धनैश्च स्वाभिमुखं न कुर्वन्ति स धैर्यशाली पुरुष एतत् सम्पूर्ण त्रैलोक्यं वशीकरोति। टिप्पणी कांता कटाक्ष विशिखाः कांतायाः कटाक्षाः कांता कटाक्षाः षष्ठी तत्पुरुष कांता कटाक्षाः एव विशिखा कांता कटाक्ष विशिखा रूपक रूप समासः कोप कृशानुतापः कोपः एव कृशानुः कोप कृशानुः रूपक रूप समासः तस्य तापः कोप कृशानुतापः षष्ठी तत्पुरुष भूरि विषयाः भूरयः विषयाः इति भूरि विषयाः कर्मधारयः लोभ पाशः लोभाः एव पाशा लोभ पाशास्तः कर्मधारयः। लोकत्रयं लोकानां त्रयं लोकत्रयं तत् षष्ठी तत्पुरुष श्लोके अस्मिन् वसंत तिलकावृत्तं तल्लक्षणं यथा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः इति। प्रस्तुत श्लोके ग्रंथकारो लोकत्रयस्य स्वर्गमर्त्य पाताल रूपस्य विजया पूर्व त्रिविध पदार्थ जेतुं निर्दिशति यथा कामिनी कटाक्षा क्रोध नानाविधा विहया भोग्य पदार्थाश्चेति त्रयस्य विजयो त्यावश्यकी वर्तते कामिनी कटाक्षबाणा प्रायण सर्वेषां हृदयं छिन्दन्ति क्रोधाग्नि संतापः संतापयत्येव तथैव नानाविधा स्रक्षन्दनादयो भोग्य पदार्था सर्वेषां हृदयं स्वाभिमुखं कुर्वन्त्येव धैर्यशीलः पुरुषः एवैतानुजेतुं शक्नोति तस्मात् स एव लोकत्रयस्य विजेता भवति लोकत्रयं वशीकर्तुं समर्थो भवतीति। प्रसंगः अब तीनों लोकों को वश में कर लेने वाले धीर पुरुष के लक्षण का निरूपण कर रहे हैं ग्रंथकार कांता कटाक्ष विशिखेति। हिंदी व्याख्या यस्य जिसके चित्तम हृदय को कांता कटाक्ष विशिखाः कामिनियों के कटाक्ष रूपी बाणों न नहीं लुनन्ति घायल करते हैं कोप कृशानुतापः क्रोध रूपी आग की आँच न नहीं निर्दहति जलाती है च तथा भूरि विषयाः नाना प्रकार के माला चंदन आदि भोग्य पदार्थ लोभ पाशय लोभ रूपी बंधन से न नहीं कर्षन्ति खींचते हैं सह वह धीरह धैर्यशील पुरुष इदम् इस कृत्स्नम् संपूर्ण लोकत्रयम् त्रिलोकी की जयति जीत लेता है। हिंदी अनुवाद जिसके हृदय को कामिनियों के कटाक्ष रूपी बाण घायल नहीं करते हैं क्रोध रूपी आग की आँच नहीं जलाती है तथा नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ लोभ रूपी बंधनों से नहीं खींचते हैं वह धैर्यशील पुरुष इस संपूर्ण त्रिलोक की को जीत लेता है। विमर्श प्रस्तुत श्लोक में ग्रंथकार तीनों लोकों को अर्थात स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल को जीतने के पहले तीन चीजों को जीतने के लिए निर्देश कर रहे हैं। वे तीन चीजें हैं कामिनियों के कटाक्ष रूपी बाण क्रोध तथा नाना प्रकार के विषय। कामिनियों के कटाक्ष रूपी बाण प्राय सभी हृदय को घायल कर देते हैं क्रोध रूपी आग की आँच सभी को जला डालती है तथा माला चंदन आदि भोग्य पदार्थ सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इन सबसे केवल धैर्यशील पुरुष ही बच पाता है और यही धीर पुरुष तीनों लोकों का विजेता है अर्थात तीनों लोकों को वश में रखने वाला है। श्लोक एके नापि ही शूरेण पादाकांतं महीतलं कियते भास्करेणैव स्फारस्फुरित तेजसा। प्रसंगः एक एव शूरः सर्वानपि वशीकर्तुं शक्नोतीति सोदाहरण दर्शयति ग्रंथकारः एकेनेति अन्वय। हि स्फारस्फुरित तेजसा भास्करेण एव एकेन सूरेण अपि महीतलं पदाक्रांतं क्रियते। व्याख्या हि निश्चयेन स्फारस्फुरित तेजसां सूर्यपक्षे बहुल प्रसृत प्रकाशेन वीरपक्षे विपुल प्रदीप्त प्रभावेण भास्करेण इव सूर्येण इव एकेन अद्वितीयेन एकाकिनेत्यर्थ सूर्येण अपि वीरेण अपि महीतलं भूतलं पदाक्रांतं सूर्यपक्षे किरणे व्याप्तं वीरपक्षे चरणाभ्यां धर्षितं क्रियते विधीयते। सरलार्थ बहुल प्रसृत प्रकाशेन द्वितीयेन सूर्येण यथा भूतलं स्वकिरणे व्याप्तं क्रियते तथैव विपुल प्रदीप प्रभा वेणा द्वितीयेन वीरेणापि भूतलं स्वचरणाभ्यां धर्षितं क्रियते। टिप्पणी स्फारस्फुरित तेजसां स्फारं च तत्स्फुरितं स्फारस्फुरितं कर्मधारय स्फारस्फुरितं च तत् तेजः स्फारस्फुरित तेजः कर्मधारय स्फारस्फुरित तेजो यस्य सः स्फारस्फुरित तेजस्तेन बहुव्रीहीतलं महास्तलं महीतलं पादाक्रांतं पादाभ्यां चरणाभ्यां वीरपक्षे पादय किरणे सूर्यपक्षे वा आक्रांतं पादाक्रांतं तृतीया तत्पुरुष। श्लोके अस्मिन् अनुष्टुप वृत्तं तल्लक्षणं यथा श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः इति अपि चात्र श्लेषोपमालङ्कारयोः शङ्कर। भास्करेणैव एकेनापि सूरेण त्यादौ उपमालङ्कारस्तलक्षणं यथा साम्यं वाच्यं वैधर्म्यं वाक्यैक उपमाद्वयोः इति स्फारस्फुरित तेजसा पादाक्रान्तं चेत्यत्र श्लेषालङ्कारस्तलक्षणं यथा श्लिष्टे पदेरयने कार्थाभिधाने श्लेष इष्यते इति। श्लोके अस्मिन् ग्रन्थकार सूर शूर्य योर्मध्ये साम्यतामुपदर्शयति यथैकेनैव बहल प्रसृत प्रकाशेन सूर्येण स्वकिरणैः सकला पृथ्वी व्याप्ता तथैव केन विपुल प्रदीप प्रभावेण वीरेणापि सकला पृथ्वी स्वचरणाभ्यां धर्षिता वीरः स्वपराक्रमेण त्रैलोक्यं विजित्य वशीकरोतीत्यर्थः। अत्र पादः शब्दः क्रीडार्थकस्य रणार्थकस्यास्ति। प्रसंगः एक ही वीर पुरुष सभी को वश में कर सकता है इसी बात को ग्रंथकार उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एके नेति हिंदी व्याख्या ही निश्चय ही स्फारस्फुरित तेजसा सूर्य के पक्ष में अत्यंत दीप प्रकाश वाले वीर के पक्ष में अत्यंत विस्तृत प्रभाव वाले भास्करेण इव सूर्य के समान एकेन एक ही सूर्येण वीर पुरुष के द्वारा अपि भी महीतलं भूतल को पदाक्रांतं सूर्य के पक्ष में किरणों से व्याप्त वीर के पक्ष में चरणों से घर्षित क्रियते कर दिया जाता है। हिंदी अनुवाद निश्चय ही अत्यंत दीप प्रकाश वाले सूर्य के समान एक ही वीर के द्वारा भी भूतल पदाक्रांत कर दिया जाता है। विमर्श प्रस्तुत श्लोक में वीर और सूर्य के बीच में साम्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रंथकार। जिस प्रकार अत्यंत दीप प्रकाश वाला एक ही सूर्य अपनी किरणों से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर लेता है उसी प्रकार अत्यंत उद्दीप्त प्रभाव वाला एक ही वीर पुरुष सारी पृथ्वी को अपने पैरों से रौंद डालता है अर्थात वीर पुरुष सारे संसार को जीतकर सबको अपने वश में कर लेता है। यहाँ पर पदाक्रांतम शब्द में विद्यमान पाद शब्द के दो अर्थ हैं किरण तथा पैर। सूर्य के पक्ष में किरण है तथा वीर के पक्ष में पैर है। श्लोक वहनिस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तक्षणान मेरु स्वल्प शिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विशरसः पीयूष वर्षायते यस्यांगे खिल लोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। प्रसंगः सर्वेषां लोकानां प्रियं शीलं यस्य पार्श्वे विद्यते स परेषां प्रकृतिं गुणं स्वरूपञ्च परावर्त तत्सर्वं सानुकूलम् संपादयितुं समर्थो भवति। दर्शयति ग्रंथकारः वह्नि रीति अन्वयः यस्य अंगे अखिल लोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति तस्य वह्नी जलायते जलनिधि तत्क्षणात् कुल्यायते मेरुः स्वल्प शिलायते मृगपतिः सद्यः कुराङ्गयते व्यालः माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते। व्याख्या। यस्य यस्य मनुष्यस्य अंगे शरीरे अखिललोकवल्लभतमं सर्वजनातिप्रियं शीलं सद्वृत्तं सदाचरणमित्यर्थः समुन्मिलति सर्वतः प्रकाशते तस्य तादृशस्य मनुष्यस्य वह्नी अग्नि जलायते जलमीवा चरति जलमीव शीतलो भवतीत्यर्थः जलनिधि समुद्रः तत्क्षणात् तस्मिन्नेव क्षणे कुल्यायते कृत्रिमा स्वल्पमा नदी वा चरति कृत्रिमा स्वल्पा नदी इव लघुतां यातीत्यर्थः मेरुः सुवर्णपर्वतः सुमेरुनामकः पर्वत इत्यर्थः स्वल्पशिलायते लघुपाषाण इवाचरति क्षुद्रप्रस्तरखण्डमिव लाघवं यातीत्यर्थः मृगपतिः सिंहः सद्यः तत्क्षणात् कुरङ्गायते मृग इवाचरति मृग इव सौम्यतां यातीत्यर्थः व्यालः सर्प माल्यगुणायते मालासूत्रमिवाचरति मालासूत्रमिव निस्तेजत्वं यातीत्यर्थः विषरसः गरजल लम पीयूष वर्षायते अमृतस्य वृष्टिरिवाचरति अमृतवृष्टिवदानन्दं जनयतीत्यर्थः सरलार्थः। यस्य मनुष्यस्य शरीरे सर्वजनातिप्रियं शीलं सर्वतः प्रकाशते तस्याग्नि जलमिव शीतलो भवति समुद्रस्तस्मिन्नेव क्षणे कृत्रिमा स्वल्पा नदीव लघुतां याति सुमेरुपर्वत क्षुद्र प्रस्तरखण्डमिव लाघवं याति सिंहस्तत्क्षणादेव मृगः इव सौम्यतां धारयति सर्पः मालासूत्रमिव निस्तेजस्त्वं याति गरल जलञ्चामृतवृष्टिवदानन्दं जनयति। टिप्पणी। अखिललोकवल्लभतमम् अतिशयेन वल्लभं वल्लभतमम् अखिलाश ते लोकाः अखिललोका कर्मधारय अखिललोकानां वल्लभतमम् अखिल लोकवल्लभतमं षष्ठी तत्पुरुष जलनिधि जलस्य निधि जलनिधि षष्ठी तत्पुरुष स्वल्पशिलायते स्वल्पाचासौ शिला स्वल्पशिला कर्मधारय सा इवाचरति स्वल्पशिलायते मृगपतिः मृगाणां पतिः मृगपतिः षष्ठी तत्पुरुष माल्यगुणायते माल्यस्य गुणः माल्यगुणः षष्ठी तत्पुरुष स इवाचरति माल्यगुणायते विषरसः विष एव रसः विषरसः रूपक समास पीयूष वर्षायते पीयूषस्य वर्षा पीयूषवर्षाः पीयूषवर्षाः इवाचरति पीयूषवर्षायते। श्लोके अस्मिन् शार्दूल विक्रीडितं वृत्तं लक्षणं यथा सूर्या स्वैर्मस जस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम् इति प्रस्तुत श्लोके सदाचरणरूपस्य शीलस्य महात्म्यं निरूपितं ग्रन्थकारेण शीलवतां पुरुषाणाम् अग्रे सर्वे जनाः नतमस्तका भवन्ति अपि च ग्रन्थकारेणोक्तं यत् शीलवतां पुरुषाणां पुरतः पदार्थाः अपि स्वगुणधर्मस्वरूपाणां परित्यागं कुर्वन्ति यथा अग्निस्वो श्रतारूपं धर्म परित्यज जलस्य शीतलात्मकं धर्म स्वीकरोति समुद्रः स्वगाम्भीर्यम् अतिक्राम्यत्वं च विहाय कुल्यां धर्म स्वीकरोतु सुमेरुपर्वतः स्वदुर्लङ्घत्वं सर्वोच्चतां च परित्यज। लघु प्रस्तरखण्डस्य सुलङ्घत्वं लघुतां च धारयति सिंहः स्वदुर्घ सतां परित्यज मृगस्य सौम्यतां धारयति सर्प स्वतेजस्वितां त्यक्त्वा माल्यसूत्रस्य निस्तेजत्वं धारयति विषजलं स्वपीडादायकं धर्म त्यक्त्वा सुधावृष्टेरानन्ददायकत्वं स्वीकरोति वस्तुतः भावो यमत्र विद्यते यत् शीलवान् पुरुषः स्वशीलस्य बलेन सर्वं साध्यं कार्यम् अपि साधितुं समर्थो भवति। प्रसंगः। जिस मनुष्य के पास में सभी लोगों का अतिप्रिय शील है वह दूसरों के स्वभाव गुण तथा स्वरूप को परिवर्तित करके उन सबको अपने अनुकूल बना सकता है इसी का कथन कर रहे हैं ग्रंथकार। वहनी रीति हिंदी व्याख्या। यस्य जिसके अर्थात जिस मनुष्य के अंगे शरीर में अखिल लोक वल्लभतमम सभी लोगों का अत्यंत प्रियशीलम शील अर्थात सदाचार समुन्मिलति अच्छी तरह प्रकाशित होता है अर्थात विराजमान है तस्य उसके अर्थात उस पुरुष के लिए वहनी आग जलायते जल के समान आचरण करती है अर्थात आग जल के समान शीतल हो जाती है जलनिधि समुद्र तक्षणा तत्काल कुल्यायते छोटी सी कृत्रिम नदी के समान आचरण करता है, अर्थात समुद्र नहर के समान छोटा बन जाता है। मेरु सुमेरु पर्वत स्वल्प शिलायते छोटे से पत्थर के समान आचरण करता है, अर्थात सुमेरु पर्वत छोटे से पत्थर के समान छोटा बन जाता है। मृगपति सिंह सद्य तत्काल कुरंगायते मृग के समान आचरण करता है, अर्थात सिंह मृग के समान सरल हो जाता है। ब्यालह सर्प माल्या गुणायते माला के धागे के समान आचरण करता है, अर्थात सर्प माला के धागे के समान निस्तेज हो जाता है। विषरस विष रूपी जल पीयूष वर्षायते अमृत की वृष्टि के समान आचरण करता है, अर्थात विष रूपी जल अमृत की वृष्टि के समान आनंद प्रदान करता है। हिंदी अनुवाद। जिनके शरीर में सभी लोगों का अत्यंत प्रिय शील विराजमान है, उसके लिए आग पानी के समान हो जाती है। समुद्र तत्काल छोटी सी नहर की तरह हो जाती है। सुमेरु पर्वत छोटे से पत्थर के समान हो जाता है। सिंह तत्काल मृग के समान हो जाता है। सर्प माला के धागे की तरह हो जाता है, तथा विष रूपी जल अमृत की वृष्टि के समान हो जाता है। विमर्श। प्रस्तुत श्लोक में शील जो कि सदाचार रूप है के महात्म्य का निरूपण किया गया है। शीलवान पुरुष के सामने हर कोई नतमस्तक होता है। ग्रंथकार ने तो यहाँ तक कहा है कि वस्तुएं अपने अपने गुण धर्म तथा स्वरूप का भी त्याग कर देती हैं। शीलवान पुरुष के लिए जैसा कि आग का पानी की तरह शीतल हो जाना, समुद्र का गंभीर तथा अनतिक्रमणीयता का त्याग कर छोटी सी नहर के समान हो जाना, सुमेरु पर्वत का दुर्लंघत्व तथा सर्वोच्चता का त्याग कर मृग के समान सौम्य हो जाना, सर्प का तेजस्विता का त्याग कर माला के धागे के समान तेजहीन हो जाना, तथा विष रूपी जल का अपने पीड़ादायक गुण का त्याग कर अमृत की वृष्टि के समान आनंद प्रदान करना आदि है। वस्तुतः यह भाव यहाँ निकलता है कि शीलवान पुरुष के अपने शील के बल पर दुष्कर तथा असाध्य कार्य भी सुकर तथा सुसाध्य हो जाते हैं। श्लोक। लज्जा गुणौध जननीम जननीमिव स्वा मत्यंत शुद्ध हृदयाम नुवत मानम तेजस्विन सुख मसूनपि संत्यजन्ति सत्य व्रतव्य सनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम। प्रसंगः। सत्य व्रत व्यसनीन तेजस्विन पुरुषा प्राणानापि सुखपूर्वक मुत्सरी जन्ति न पुनः स्वाम प्रतिज्ञामि ति दर्शयति ग्रंथकारो अंतिमनि ति वचसा लज्जा गुणौध जननी मिति अन्वय। सत्य व्रत व्यसनी न तेजस्विन असून अपि सुखम संत्यजन्ति लज्जा गुणौध जननीम अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमानाम स्वाजननीम इव प्रतिज्ञाम न पुनः। व्याख्या। सत्य व्रत व्यसनीनः सत्य परिपालना सक्ता सत्यशीला इत्यर्थ। तेजस्विनः प्रतापिनः शक्तिशालिनः इत्यर्थ। असून अपि प्राणान अपि सुखम सुखपूर्वकम क्लेशम विनेत्यर्थ। संत्यजन्ति परित्यजन्ति उत्सृजन्ति इत्यर्थ। लज्जा गुणौध जननीम व्रीडादि गुण प्रवाहोत् पादिकाम अत्यंत शुद्ध हृदयाम बहु शुद्ध मानसाम अनुवर्तमानाम। अनुकूल प्रवर्तमानाम शरीरेण सह वर्तमानाम इत्यर्थ। स्वाम स्वकीयाम जननीम इव मातर मिव जन्मदात्री मिवेत्यर्थ। प्रतिज्ञाम संविदाम अंगीकृताम विषय रूपाम इत्यर्थ। पुनः नु न नैव संत्यजन्तीति शेषः सरलाथ सत्य परिपालन सक्ता शक्तिशालिनः पुरुष स्वप्राणानपि सुखपूर्वकं परित्यजन्ति किन्तु व्रीडादि गुण प्रवाहोत्पादिकां बहुषु शुद्ध मानसा मनु कूल प्रवर्तमानां स्वकीयां मातर्मिवांगकृत विषय रूपां संविदां नैव परित्यजन्ति। टिप्पणी। सत्यव्रत व्यसनीनः सत्यस्य व्रतम सत्यव्रतम षष्ठी तत्पुरुष सत्यव्रते व्यसनम येषां ते बहुब्रीहि लज्जा गुणौध जननीम लज्जा एव गुणा लज्जा गुणा स्वरू स्वरूपक रूपः समासः तेषां ओघ लज्जा गुणौध षष्ठी तत्पुरुषस्य जननी लज्जा गुणौघ जननी ताम षष्ठी तत्पुरुष अत्यंत शुद्ध हृदयाम अत्यंत शुद्धम हृदयम यस्यास्या अत्यंत शुद्ध हृदयताम अनुवर्तमानम 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 अव्ययी भाव समास श्लोके अस्मिन् वसंत तिलकावृत्तम लक्षणम यथा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः इति अपि चात्रोपमालंकारस्त लक्षणम यथा साम्यवाच्यम वैधर्म्य वाक्यैक उपमा इति। प्रस्तुते श्लोके स्वप्रतिज्ञा स्थूलं स्वमात्रा सहकृत्य ग्रंथकारेण विशेष त्रयोपादानेन तद्यथा लज्जादि गुण समूहं माता प्रतिज्ञां च उभे जनयत यथा क्रमं पुत्रे प्रतिज्ञा पालन कारिणी च मातुर हृदयं सर्वदा निर्मलं भवति तस्मिन् न कापि कलुषित भावना तिष्ठति तथैव प्रतिज्ञापि प्रतिज्ञापालनकारिणो हृदयं निर्मलं करोति प्रतिज्ञापालनकारिणो हृदये न कापि कलुषित भावना तिष्ठति माता सदैवानुकूल प्रवर्तमाना तिष्ठति सदैव पुत्रस्य मंगलमिच्छति पुनश्च जीवनं पुत्रस्य रक्षिका सति तिष्ठति तथैव प्रतिज्ञापि प्रतिज्ञापालनकारिणां सहैव प्रवर्तमानां तिष्ठति पुनश्च जीवनं सहचारिणी सति सर्वदैवाक् रूपा तिष्ठति अतो यः सत्यस्य परिपालने सर्वदा सक्तो भवति स तेजस्वी भवति स कदापि स्वप्रतिज्ञां न परित्यजति स्वप्रतिज्ञा परिपालनाय सुखपूर्वकं प्राणानपि समये संत्यजतीति प्रसंग सत्यशीलं तेजस्वी पुरुष अपने प्राणों को भी सुखपूर्वक छोड़ देते हैं किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते हैं इसी नीति वचन का कथन कर रहे हैं। ग्रंथकार लज्जा गुणौध जनन मिति हिंदी व्याख्या। सत्य व्रत व्यसनीनः सत्य के परिपालन में आसक्ति रखने वाले तेजस्विनः तेजस्वी पुरुष असून अपि प्राणों को भी सुखम सुख पूर्वक अर्थात बिना किसी क्लेश के संत्यजंती छोड़ देते हैं। लज्जा गुणौध जननीम लज्जा आदि गुणों के समूह को उत्पन्न करने वाला अत्यंत शुद्ध हृदयाम अत्यंत निर्मल हृदय वाली अनुवर्तमानम अनुकूल रहने वाली अर्थात सर्वदा समभाव में रहने वाली स्वाम अपनी जननीम इव माता के समान प्रतिज्ञाम प्रतिज्ञा को अर्थात अंगीकृत विषय रूपी संविदा को पुनः तो न नहीं छोड़ते हैं। हिंदी अनुवाद। सत्य पालन में आसक्ति रखने वाले तेजस्वी पुरुष प्राणों को सुखपूर्वक छोड़ देते हैं न कि लज्जा आदि गुणों के समूह को उत्पन्न करके अत्यंत निर्मल हृदय वाली तथा अनुकूल रहने वाली अपनी माता के समान प्रतिज्ञा का विमर्श। प्रस्तुत श्लोक में स्वप्रतिज्ञा की तुलना स्वमाता के साथ की गई तीन विशेषणों से लज्जा आदि गुणों के समूह को माता और प्रतिज्ञा दोनों मनुष्य में उत्पन्न करने वाली है। माता का हृदय भी अत्यंत निर्मल रहता है उसके अंदर कलुषित भावना नहीं रहती है। उसी प्रकार प्रतिज्ञा भी प्रतिज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति के हृदय को निर्मल बना देती है तथा प्रतिज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति के हृदय में कलुषित भावना कभी भी नहीं रह सकती है। माता सदैव पुत्र के विरुद्ध में कुछ भी नहीं करती है वह उसकी रक्षक बनकर सदा अनुकूल रहकर मंगल कामना करती है तथा आजीवन पुत्र का साथ देती है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा भी व्यक्ति के साथ साथ चलती है व्यक्ति की आजीवन सहचारिणी बनी रहती है वह समान रूप से एक भाव से विद्यमान रहती है। इसलिए जिस व्यक्ति की आसक्ति सत्य के परिपालन में रहती है वह तेजस्वी व्यक्ति होता है वह कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकता है भले ही अपने प्राणों को छोड़ना पड़े। इतना ही नहीं बल्कि समय पर ऐसे व्यक्ति हंसते हुए प्राण को छोड़ देते हैं। इति।